Enjoy कीजिए 12 food stations and up to 150 items at Chattori Gully Food Festival, Tandoori Flame Mississauga and Brampton. नियत फिसलेगी जब जीभ लपलपाएगी, जब जनता तंदूरी फ्लेम में आएगी. Tandoori Flame, सबके लिए कुछ ना कुछ.
सोडी फर्नीचर कंपनी साडी कम्युनिटी दी सब तो पहले ते वड्डे शोरूम्स वाली कंपनी है, जेडी के वधिया 100 सार फर्नीचर ते डेकोरेटिव आइटम बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस ते बेच रहे हैं. 4 सालां ली बिना व्याज ते फाइनेंसिंग दा भी प्रबंध. ब्रैम्पटन च 74 डेवन रोड जां 142 कैनेडी रोड साउथ ते पहुंचो. दोनों लोकेशंस दा इक्को ही नंबर 9058747171.
ਅਜਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ. ਅਜਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈ. ਅਜਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈ.
प्रवेशा बोलिए, क्या हाल है आपका?
जी सर, मैं आपको आवाज आ रही है मेरी?
आ रही
जी. जी ओके चले.
और कोई नई ताजी?
सर नई ताजी तो आप ही सुनाते
हैं. ये बात भी है. हाँ जी, क्या कहा आपने?
पता नहीं मेरे कैमरे में क्या वो है, जब मैं बात करता हूँ तो वो फिर मुझे वो जो साइट के नीचे पिक्चर नजर आती है वो गायब हो जाती है, तो फिर मैं समझता हूँ कि कुछ खराबी होगी.
अच्छा, अगर अगर होगी तो मैं आपको बता दूंगा.
वो गायब हो जाती है पिक्चर
जी.
उसका कोई मुझे प्रिस्क्रिप्शन देख के दें तो उसको सही करूं. मैं
करता हूँ कुछ. अभी जैसे शुरू नहीं होया? अजय जी शुरू है. ओ हाँ जी, हाँ जी दे दो. ठीक है, तुसी इत्थे रहना फिर.
हमारी बहन भी आपके घर पे आई हुई?
अभी
ओ अच्छा
वो
मेरा सलाम लेना.
जी जी जी, वो सुनती है ना तो उनको नहीं पता लगता कैसे करना, तो मुझे दे गई है फोन, फिर जब वो एडजस्ट करके तो मुझे कहती है दे देना. मैंने कहा अच्छा आप ठहरिए तो डिस्प्ले. टॉपिक थोड़ा चेंज कर दिया मैंने.
अच्छा अच्छा, क्या है?
दुचड़ा हुआ मजहब.
पिछड़ा हुआ मजहब?
नहीं, दुचड़ा हुआ.
दुचड़ा क्या मतलब?
दुचड़, जो दुचड़ जाता है, दचोड़ देते जिसको.
अच्छा,
रेडी हो जाए?
जी जी मैं रेडी हूँ.
तो फिर हम अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हो जाएंगे.
जी जी,
आप बेशक अपनी जुबान में भी आज बोल दीजिएगा क्योंकि उससे फर्क पड़ता है.
हाँ हाँ ओके.
तो
मैं इतना समय बैठ चुका हूँ.
شہیدوں کے اوپر سے پردہ اٹھائے گا. پرویز صاحب بھی برسط موجود ہیں. میں پھر دہراتا ہوں آج کا ٹاپک ایک نچڑا ہوا مذہب, ایک مذہب جس کو نچوڑ دیا گیا ہے اور دنیا کا آخری مذہب ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کون سا ہے, دنیا کا نچڑا ہوا آخری مذہب. اور یہ بائبل کی سٹوری ہے, بائبل میں سے ہم آپ کی خدمت میں بتائیں گے. اور آپ کا اس پروگرام کو سننا کیوں ضروری ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے, کیونکہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ کے لیے ایک بہت گہرا راز پوشیدہ ہے. اور اس پروگرام سے آپ کو بہت سے رازوں کے اوپر سے پردہ اٹھے گا تو ضرور. اور دوسری بات یہ کہ اس پروگرام کو آپ سنے بغیر اس پہ کامنٹ مت کیجیے, اس کو پورا سنیے اور اس کے بعد اس کے اوپر کامنٹ کیجیے, یہ ہماری آپ سے درخواست ہے. تو ہم آپ کی خدمت میں آتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. تو آج کے ٹاپک کو لیٹ می شیئر کپل آف تھنگس فار یو اور اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں آتے ہیں. آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر دس پروگرام اور کپل آف ویب سائٹس, پلیز اسٹے ٹیون. بٹ دس از دا ٹاپک دیٹ وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ ٹوڈے. تو ضرور ہمارے ساتھ رہیے, کہیں مت جائیے. مجھے یقین ہے کہ آج کا ٹاپک آپ کے لیے اور ہمارے لیے برکت کا باعث ہوگا. پرویز صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟
جی پہلے تو آپ کو اور تمام سننے والوں کو خداوند یسوع مسیح میں بہت بہت مبارک ہو.
پرویز صاحب آپ کو بھی.
پروگرام واقعی
تھوڑا سا اونچا بولیں گے پرویز صاحب؟
ہاں جی
تھوڑا سا اونچا بولیں گے آپ؟
جی جی آپ کا ہر پروگرام جو ہے وہ الگ الگ ٹاپک لے کے آتا ہے لیکن آخر میں وہ ہم کو ایک محبت کا اور ایسا میسج اس میں سے ملتا ہے جس سے ایٹ لیسٹ میں آپ کا نہ صرف فین ہوں بلکہ آپ کے ساتھ ہی پروگرام کرتا ہوں, لیکن جب آپ کی باتیں میں سنتا ہوں تو سارا دن ان پہ کہیں نہ کہیں غور
کرنے. تھوڑا سا اونچا بولے. let me increase the volume, go ahead please.
تو مجھے موقع ملتا ہے کہ میں سوچنے کا موقع ملتا ہے تو اس سے مجھے تھوڑی ایک نئی سمجھ آتی ہے کلام سے.
جی
تو سب تو پہلے تستی خدمت دے خداوند یسوع مسیح دے پاک اور بزرگ نام پہ تستی سلامتی چاہتے ہوں اور تسا یہ پروگرام سن دے ہو تستی بہت مہربانی اور تسا اس کو اگر بھی شیئر کر دیتے کرو کیونکہ اس پروگرام پہ اصا بائبل دے بائبل دے بارے بھی اصا گل کر دیا نے. بائبل جڑی آئے وہ خدا دا کلام اور بائبل جڑی آئے ایک قرآن میں بھی اسی طرح لکھے دے. قرآن دے بائبل دے متعلق لکھے دے کہ بائبل پہ یعنی زبور اور انجیل پہ نورا اور ان کتابوں کو دے بارے میں قرآن اصل دست ہے کہ انہیں پڑھنا چاہیے. وہ لوگ جڑے تو سنگ منع کر دیں کہ ان کتابوں کو نہ پڑھو وہ جھوٹ ہاک دیں. تو سنگ تا اس دن جڑی سارا تمام اے جڑا پروگرام ہوندا ہے ہر سنڈے ہر اتوار والے دیہاڑے صبح اس تے ایتھا امریکہ پہ صبح 9 بجے شروع ہوندا ہے اور 10 بجے ختم ہوندا ہے. تو سب کلمہ خدا رات دے 8 بجے سن اور 9 بجے ختم ہو سی مخالا. لیکن اس پروگرام میں اسا تو سندار بائبل دے بائبل جڑی ہے اس پہ کے لکھے دے اور کے خدا چاند ہے اسا کو لو اور من خالق اس آخری بے بائبل جڑی ہے دنیا کی ساری گلنگ لپیٹ کے محبت بے چوپڑ کے دی ہے. جس طرح اسا پراٹھا بنانے ہیں اس کو پھر اس کے اندر سالنا یا کچھ چیز با کے یا کہ با کے اسا چوپڑ کے اس کو ساری گلا آخری بے محبت بے آ کے چوپڑی ہیں جلدی اور محبت کا پیغام بائبل سنا دی. اگر محبت اسا کی دنیا کی جنگ ختم ہو گئی اور بہت بڑا فرق ہے. اس پروگرام کو سن دے رہا ہوں, اس پروگرام کو سن دے رہا ہوں, اور اس پروگرام کو تساں آگا بھی شیئر کرو تاکہ یہ محبت پیغام ہر کنا تک پہنچا.
رائٹ, ڈیفینیٹلی آپ اس کو شیئر. اور دوسری بات یہ پرویز صاحب, دوسری بات یہ کہ میں اپنے بہنوں بھائیوں سے کہتا ہوں کہ پروگرام کو سنے بغیر کامنٹ مت کیجیے. جسٹ لسن ٹو دا پروگرام. دیر از اے ریزن, ایک پرپز ہے ہمارا جو ہم ٹائٹل جو ہم پک کرتے ہیں, دیر از اے ریزن فار دیٹ. سو دیٹس آل.
فائدے اور ٹائٹل اس کا نا کیوں رکھا گیا وہ تسن آخری میں پتا چل سی, کیونکہ اس کے ہر پروگرام کا ٹائٹل نا جڑا ہوں الگ الگ مختلف نا ہوں مختلف ٹاپک تک گل کرتے ہوں آخر تک پروگرام کو سنو. اس تو بعد چڑا تس کے دلا پہ گل آئے تو سر کامنٹ چھوڑ رکھتے ہو, تو سر تنقید بھی کر رکھتے ہو, سوال پوچھ رکھتے ہو, جو تس کی مرضی. یہ اس کا پروگرام اصا اسی واسطے کرتے ہیں تاکہ محبت کا محبت کی آواز اور خدا کا کلام
ڈیفینیٹلی. پرویز صاحب, here's the thing, we are going to restart the program. Parvez sahab, hamare jo behad bhai sun rahe, please stay tuned. We are going to restart the program kyunki program ke shuru mein ہماری آواز بہت سے بہنوں بھائیوں تک نہیں پہنچی. تو کیا ہوتا ہے کہ بعد میں جو بہن بھائی سنیں گے, جب فرسٹ پارٹ ول بی سائلنٹ, دیٹ ڈسکریج دیم ٹو کنٹینیو. سو وی آر گوئنگ ٹو اسٹاپ دس پروگرام اینڈ ری اسٹارٹ اٹ فار یو. سو اسٹے ٹیون, وی آر گوئنگ ٹو ری اسٹارٹ دا پروگرام. ٹورانٹو میں جو ہماری براڈ کاسٹ ہے دیٹ ول کنٹینیو, یو ول لسن ٹو دا سانگ, بٹ فیس بک پر لیٹ اس ری اسٹارٹ دا پروگرام, گیو اس فیو منٹس اینڈ ول کم رائٹ بیک. اسٹے ٹیون.
Thank you.
पिछड़ा हुआ मजहब है ये किसका है, आपका है, हमारा है या दूसरे लोगों का है, या जो भी सुन रहे किसका मजहब है ये निचला हुआ, और ये दुनिया का आखिरी मजहब है ये निचला हुआ मजहब किसका है। दिस इज व्हाट वी विल टॉक अबाउट इन आवर प्रोग्राम। तो जरूर इस प्रोग्राम को सुनिए आखिर तक। परवेज साहब भी बरसात मौजूद है, कुछ देर के लिए गायब हो गए लेकिन अभी वापस आते हैं। पर इस आप फिक्र नहीं कीजिए, आप अगर आवाज आपकी वो चली भी जाती है तो वापस आ जाएगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये एक बहुत अहम मौजू है आपके लिए। मैं फिर इसको एक दो वेबसाइट के ऊपर शेयर कर दू क्विकली एंड देन विल कंटिन्यू। लेकिन इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए हमारे प्रोग्राम्स को, और बहुत से बहन भाई हैं जो सुने बगैर इस पर कॉमेंट्स देते हैं। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। इमरान साहब आपका शुक्रिया, आप कॉमेंट्स छोड़ रहे हैं, ये भी बताइए कि अब आपको हमारी आवाज आ रही है या नहीं, प्लीज लेट अस नो। उससे हमें पता लगता है, वी अदरवाइज वी डोंट नो। तो हमें आप जरूर बताइए, तो निचड़ा हुआ मजहब किसका है। सबसे पहले हम प्रवेश साहब विल स्टार्ट राइट अवे, और स्टूडियो के नंबर आपके सामने है, नीचे बॉटम लेफ्ट पर है, अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। सबसे पहले प्रवेश साहब हम ये बताएंगे, और ये बहुत सी बातें हैं जो बार बार हमने आपको पहले भी बताई हुई है, तो बहुत सी बातें हो सकता है कि रिपीट वो बातें हो जो हमने पहले भी की है, लेकिन हर बार हम ये यकीन रखते हैं कि जो हम आपको बताते हैं उसमें से एक नया मैसेज आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे बाइबल में क्विकली कि इंसान को बनाने का मकसद क्या था। नाउ वी हैव टॉक्ड टू यू अबाउट दिस बिफोर बट आई स्टिल वांट टू टच इट। पैदाइश की किताब में हमें जिक्र मिलता है, वहां पर खुदा फरमाता है, कहता है, और खुदा ने और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, अपनी इमेज पर, अपनी छवि पर। गौर से सुनते जाइएगा, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। इसका मतलब यह हुआ कि खुदा ने जब इंसान को अपनी छवि पर पैदा किया तो उसका मतलब यह हुआ कि छवि को देखकर आपको किसी हस्ती का पता लगता है, जैसे आपकी छवि को देखकर आपके बारे में पता लगता है। तो जब खुदा ने अपनी छवि पर पैदा किया, इसका मतलब है कि जो खुदा का मकसद था वो ये था कि इंसान को देखकर खुदा के बारे में पता लगे, यानी कि इंसान का मकसद ये था कि अपनी जिंदगी से खुदा को जाहिर करना, यानी कि खुदा के बारे में। जी,
यानी इंसान वो काम करे जो खुदा करता है,
डेफिनेटली खुदा की जो अच्छाइयां है वो इंसान की जिंदगी से जाहिर हो, तो ये मकसद था। तो इसको आप याद रखिए। अब क्या हुआ कि जो इंसान है परवेश साहब, वो गुनाह करके खुदा से दूर हो गया, इसलिए आज भी लोग कहते हैं कि इंसान गुनाह का पुतला है, खता का। जिस शख्स से बात करें वो यही कहता है। जब परवेश साहब हम एक दूसरे के आगे जब हम बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं जी खाकसार, ऐसा कहते हैं हम लोग, जी मैं तो गुनहगार बंदा हूं। तो ये दरअसल हकीकत में हमारा जमीर हमें बता रहा होता है। हाँ, ये अलहदा बात है कि बाद में हमारी अकड़ सामने आ जाती है और हम ये कहना शुरू कर देते हैं जी हमारा मजहब अच्छा है और हम ये हैं, हम दूसरों से अच्छे हैं, वो ऐसा खाना खाते हैं, हम ऐसा खाना खाते हैं, वैसे कपड़े पहनते हैं, हम ऐसे कपड़े पहनते हैं। ये हमारी अदा और हमारी अकड़ सामने आ जाती है, लेकिन जब आप अकेले में होते हैं उस वक्त आपको पता लगता है, यू नो इट, कि आप अंदर से कैसे हैं, यू नो इट डीप इनसाइड योर हार्ट, जो किसी को नहीं पता। एंड आई विल लीव इट अप टू यू, वो नियतों को जानने वाला खुदा है। लेकिन मुझे ये बाइबल के मुताबिक हर शख्स गुनेगार है, और गुनेगार शख्स को अंदर से पता होता है कि वो कौन है। तो इंसान या मजहब की अकड़ जो है वो, जब प्रोफेसर मैं कभी कभी सोचता हूं, जब आप खुदा के पास जाएंगे, ये मेरा बिलीफ है, तो आप खुदा से ये कहें कि जो है मेरा मजहब जो था वो बहुत अच्छा था मेरा, खुदा कहेगा, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं, आई एम नॉट, आप देखिएगा पॉइंट। तो खुदा कह सकता है कि तू मजहब की अकड़ को पीछे रखते रहे, मजहब की अकड़ मुझे मत दिखा, ऐसा कहते ना परवेश साहब, तू अपने खानदान की अकड़ मुझे मत दिखा, राइट, तू अपने जो तेरा वो इतना अमीर जो चचा है उसकी अकड़ मुझे मत दिखा, मैं भी किसी से कम नहीं हूं, राइट। तो मजहब की अकड़ जो है ये खुदा के सामने काम नहीं आएगी। तो इस बात को आप बार 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 मत कहते रहा करें कि हमारा मजहब अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा नहीं है, उस वक्त मजहब की अकड़ काम नहीं आएगी आपके, उस वक्त ये काम आएगा कि आप कैसे हैं। सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या हुआ कि जो मजहब जो खुदा ने, जो इंसान जब खुदा ने बनाया तो उसका मकसद था खुदा के करदार को जाहिर करना अपनी जिंदगी से, लेकिन इंसान उसमें नाकाम हो गया गुनाह की वजह से, और हर शख्स जानता है कि वो गुनहगार है, वो खुदा के उस मकसद को पूरा करने में नाकाम हो गया, तो वो भटक गया इंसान। और तभी सब जो शख्स भटका हुआ होता है उसको रास्ता दिखाया जाता है, क्या ख्याल है आपका? जो शख्स मंजिल तक पहुंच जाता है वो उसको रास्ता नहीं दिखाया जाता। तो मजहब आने का एक सबूत ये, आपके भटके हुए होने का एक सबूत ये भी है कि आपको मजहब दिया गया है, राइट। तो परमेश्वर देखिए, जो मंजिल हमारी थी, गौर से सुनते जाएगा एक नुक्ते को, जो हमारी मंजिल थी वो क्या थी? खुदा के करदार को अपनी जिंदगी से जाहिर करना, ये बाइबल का बयान है, ठीक है। तो जब आप भटक गए इसका मतलब है कि वो जो मंजिल थी आपकी, यानी कि खुदा के करदार को अपनी जिंदगी से जाहिर करना, उस मंजिल से जब आप भटक गए तो फिर आपको मजहब दिया गया, रास्ता दिया गया बहुत सी बातों के लिए, क्योंकि भटका हुआ शख्स जो है बड़े खतरात में गिर जाता है। परवेश साहब, चोर आ जाते हैं, डाकू आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, जब आप मंजिल पर नहीं है तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो मजहब दिया गया, जो शख्स मंजिल से भटका हुआ है और मकसद मंजिल पर पहुंचना था, तो मजहब का मतलब यह है कि आपको मंजिल पर पहुंचाया जाए। तो जब मजहब का मकसद यह है कि मंजिल पर पहुंचाया जाए आपको, राइट, तो मजहब जो है उस पर फखर करना अच्छा है, करें अगर करना चाहते हैं तो, लेकिन हकीकत यह है कि आप उस मंजिल पे पहुंचे हैं या नहीं। वो जिसको इंसानियत, जब खुदा ने इंसान को बनाया, इसका मतलब है कि इंसान का मतलब अपनी जात में ये है कि खुदा के करदार को अपनी जिंदगी से जाहिर करना। तो अगर आप वो नहीं कर रहे तो आप भटके हुए हैं, आप इंसान नहीं है अभी तक, आदमी तो है, शख्स तो है, लेकिन वो जो इंसान जो खुदा ने बनाया था वो उसमें इंसानों वाली खसूसियत नहीं है आप में पूरी तरह मुकम्मल तौर पर। तो मजहब जो है वो जब दिया गया तो वो मंजिल तक पहुंचाने, यानी कि आपको खुदा की इमेज क्रिएट करने के लिए दिया गया। तो ये अब सवाल पैदा होता है कि नुचड़ा हुआ मजहब कौन सा है, है ना परवेश साहब? ये मजहब तो वो है जो आपको मंजिल तक पहुंचाया, राइट, मजहब ने, लेकिन ये नुचड़ा हुआ मजहब कौन सा है परवेश साहब? ये एक सोचने की बात है। कभी आपने एक नुचड़े हुए टमाटर को देखा है परवेश साहब, या नुचड़े हुए बाल्टे को देखा है आपने?
जी,
नुचड़ा हुआ बाल्टा कैसा लगता है?
अजीब सा लगता है,
अजीब सा लगता है, राइट। नुचड़ा हुआ बाल्टा अजीब सा लगता है, और एक नुचड़ा हुआ जब आप बनाते हैं क्या कहते हैं उसको, वो जो नींबू की क्या बनाते हैं परवेश साहब, नींबू की जो बनाते हैं लेमनेड बनाते हैं जब आप, राइट, तो नींबू को आप निचोड़ते हैं, राइट, तो नुचड़ा हुआ नींबू भी परवेश सब कोई अच्छा नहीं लगता, राइट। और बाज का तो इंसान का चेहरा है आप देखकर कहते हैं तो इसका चेहरा यार भाई क्या हो गया भाई, तेरा चेहरा तो ऐसे नुचड़ा हुआ लग रहा है, राइट। नुचड़ा वो चेहरा होता है जिसके अंदर उस चेहरे की जो तमाम ताकत है, राइट, राइट, उसमें से जब निकाल ली जाती है, राइट, नहीं समझे परवेश सब नुचड़े, लेकिन आज तक कोई
एक बच्चे का चेहरा या एक बूढ़े के चेहरे में जो जो फर्क होता है वो आप
दुचड़ा हुआ, राइट जी, अब ये कह सकते हैं कि जो एक बूढ़ा शख्स है झुरिया पड़ी है उसका चेहरा दुचड़ गया है, राइट, जूस निकल गया उसमें से, और जो दुचड़ा हुआ, अच्छा तो अब आगे बढ़े तो, लेकिन जो, लेकिन आज तक मैंने किसी को नहीं देखा परवेश साहब कि जो नींबू को पूरा निचोड़ दे, नींबू को पूरा आज तक कोई माई का लाल नहीं निचोड़ सका।
अच्छा,
कुछ ना कुछ जूस रह जाता है ना नींबू के बीच में, आप जितना भी नचोड़ेंगे, प्रोफेसर बशीर होती है, या आप बाल्टी को जितना नचोड़ेंगे कुछ ना कुछ जूस रह जाएगा बीच में, ठीक है। तो कोई उसको, लेकिन नचोड़ने का जो असली नुचड़ा हुआ जो निब्बू होता है, असली नुचड़ा हुआ जो जो माल्टा होता है, और अनार, अनार पर सब अगाचा, अनार को नचोड़ते हैं ना, क्रश ही करते ना, नचोड़े ना उसको, उसका जो जूस निकलता है वो बड़ा अच्छा होता है। लेकिन पूरी तरह कोई इस अनार को भी आज तक नहीं नचोड़ सका। जो अगर आप देखें, अब पाकिस्तान में होते थे वो जो रेडियो पे प्रोफेसर जूस निकालते, राइट, वो जब उस नचोड़ते थे, जो फेंकते थे, अगर आप उसको हाथ लगाए बाल्टे को तो गीला ही होता था फिर भी। इसका मतलब है कि उसमें से अभी भी थोड़ा बहुत जूस, अगर आप उसको मुंह में रख के चूसे तो फिर भी थोड़ा जायका आपके मुंह में आ जाता था, यानी कि पूरी तरह उसमें से दही जूस निकला। लेकिन जब आप बाल्टे को पूरा नचोड़ देते हैं 100%, उसका मतलब पता है क्या होता है प्रोफेसर? उसका मतलब यह हुआ कि उसके अंदर जो कुछ भी था, जो भी ताकत थी उसके अंदर, एवरीथिंग, सारा विटामिन, सारे प्रोटीन, सारे केमिकल्स, सारा एवरीथिंग नीड्स टू गेट आउट फ्रॉम इट, राइट? क्या ख्याल है आपका? यानी कि बाल्टे को जब आप 100% नचोड़ते हैं तो पीछे बाल्टे में और कुछ रह नहीं जाता, है ना? असली नचोड़ना तो वही हुआ ना परवेश साहब
जी,
लेकिन वो आज तक कोई नचोड़ नहीं सका उसको। बाल्टे को आज तक मैंने नहीं देखा किसी को पूरी तरह नचोड़ते हुए। जितना भी नचोड़ा हो, अगर आप उसको देखें तो आपको फिर भी वो, आप मुंह में लगाएंगे तो आपको फिर भी वो गीला लगेगा,
राइट? और उसकी खाल में भी, उसकी खाल में भी जूस होता है,
खाल में भी जूस, वो भी आपको, एग्जैक्टली, ठीक है। तो मुकम्मल तौर पर हमने देखा है कि कोई बाल्टे को नहीं निचोड़ सका। अब परवेश साहब, आप बाल्टों की क्यों बात कर रहे हैं जबकि हमारा टॉपिक है दुचड़ा हुआ मजहब? इसलिए कि बाल्टे में और मजहब में
फर्क
है। नहीं, नहीं। फर्क तो है लेकिन जो मिसाल हम दे रहे हैं बाल्टे की, उससे हम मजहब को समझने में मदद मिलेगी। बाल्टा आज हमें मजहब को समझने में मदद देगा। अब प्रवेश साहब, आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो मजहब के ऊपर इतनी बहस करेंगे जैसे बाल्टे को पकड़ा हुआ है, राइट? क्या बात है बाल्टे की यार, क्या रंग गई इधर से, राइट? अरे क्या ऐसे पका हुआ लग रहा है बाल्टा, देखो है
कितना चमक,
कितना गोल है, चमक रहा है सर इसको, और पता लगे वो रंग लगा के चमकाया हो हमें, राइट? कितना अच्छा है, राइट? और ये इस बाल्टे की ये किस्म है, ये किस्म है इस बाल्टे की, राइट? ये मौसमी है, ये नारंगी है, ये सारंगी है, पता नहीं कितने बाल्टे बनाए हुए, ठीक है। ये किन्नू है और ये एक और भी होता है प्रोफेसर, एनीवेज। तो ये इसी तरह, और फिर बाज़ुकात लोग ये कहते नहीं जी ये वाला बाल्टा ज्यादा अच्छा है, ये कहते ना प्रोफेसर, और ये वाला बाल्टा क्या है वो ज्यादा अच्छा है, इसमें ये विटामिन है, नहीं 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 ये जो मैं बेच रहा भाई साहब इधर आके मेरी रेड़ी से खरीदी है, ये बाल्टा हमारी रेड़ी पे जो है अच्छा बिक रहा है अच्छे। तो बाज़ुकात तो लोग ऐसे आवाजें लगा लगा के लोगों को बुलाते हैं, है ना प्रोफेसर
जी?
अब बाल्टे में और मजहब में क्या फर्क है या क्या चीज कॉमन है? लेट मी टेल यू, मजहब का हाल भी लोगों ने, मजहब ने नहीं, मजहब अपनी जात में अच्छा है, आपका मजहब आपके लिए अच्छा है, गौर से सुनते जाइएगा बात, जैसे मैंने कहा डॉट कॉमेंट अंटिल वी फिनिश द प्रोग्राम। लेकिन लोगों ने उस मजहब की इतनी किस्में बना ली है, राइट? किसी को किन्नू बना दिया है, किसी को संतरा बना दिया है, किसी को बाल्टा बना दिया है, किसी को मौसमी बना दिया है, राइट? और जी आप मेरे मजहब की तरफ आए, ये अच्छा है, नहीं नहीं उधर नहीं, ये इसको आम जुबान में मजहब के फिरके कहते हैं। इतने फिरके बना दिए हैं, राइट? इतने, और ये हर मजहब की बात है, मैं अपने मजहब, मेरे मजहब की बात भी कर रहा हूं और आपके मजहब की, आपके मजहब को कोई चार चांद नहीं लगे हुए मेरे मजहब से ज्यादा, नहीं समझे मेरी बात आपको? आप ये नहीं, हमारा मजहब बहुत अच्छा है, आप लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट बिकॉज आई गेट लिटिल एक्साइटेड अबाउट दैट, सो लिसन। तो इसी तरह हमने मजहब को भी खींच खींच के, उधर खींच रहा है, उधर खींच रहा है, कोई लोगों को खींच रहा है, भाई साहब इधर आइए, भाई साहब इधर, एक ही मजहब के अंदर एक मजहब बनाया खुदा ने, और उसका लोगों ने ऐसा उसका अचार बनाया उसका, राइट, खींच खींच के इतनी किस्में बरादरी के बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है यार, मैं कौन सी रेडी पे जाऊं, समझ आया परवेश साहब, कौन सी रेडी भाई, ये कह रहा है वो कह रहा है, अब मैं किस किस की बात, सुभाष का तो बंदा कहता है यार ये मजहब का नाम ही खत्म कर दो, मैं जा रहा हूं भाई घर, मैं बाल्टा नहीं खाता भाई, राइट, ये तुम ही रखो,
तो खुदा की
इतनी कंफ्यूज कर देते हैं मजहब के बारे में लोगों को, बहुत से लोग, कि बंदा कहता है यार ये मैं पतरी क्या हो रहा है यार, ये भी अपने पास ही रखो अपना मजहब, मैं जा रहा हूं, बहुत से लोगों से मिला हूं जो इस चीजों से तंग आ गए हुए हैं कि ये मजहब यार इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है लोगों ने, राइट, ये करो तो गुनाह, ये ना खाओ तो गुनाह, ये कर लोगे तो गुनाह, क्रिकेट खेल, बाज लोग कहते हैं क्रिकेट खेलोगे तो गुनाह हो जाएगा, कैन यू बिलीव दैट पर्सन, क्रिकेट के ऊपर फतवे लगाए हुए हैं, पता नहीं कहां कहां से लोग फतवे लेकर आ जाते हैं, और ये मैं अपने मजहब की बात भी कर रहा हूं, हमारे अभी पिछले दिनों परवेश साहब, वो अभी ईद उल अज़हा हुई है, तो हमने एक प्रोग्राम किया था ईद उल अज़हा के बारे में, ऐसे ऐसे फतवे क्रिश्चियन लोगों ने दिए हमारे ऊपर कि आप ईद का गोश्त ना खाए, आप ये ईद हमारी नहीं है, ये ईद उनकी है, वो फलाने हो गए, वो ढमकाने हो गए, राइट, और ऐसी ऐसी तावीलें निकाली उसके अंदर से, मेरा मतलब कहने का ये है कि मैं इस हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन प्रवेश साहब मैं कभी कभी सोचता हूं अगर एक ईद का बकरा जिबा किया किसी ने फॉर एग्जाम्पल, राइट, और वो अगर देखा जाए, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, लेट्स नॉट टॉक, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं वो हमारा सेपरेट टॉपिक है परवेश साहब, अब इस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर लोग चाहे तो हर चीज का पतंगड़ बना सकते हैं, अगर चाहे तो, हम ईद उल अज़हा को नहीं बनाते, वी नो दैट, राइट, बिकॉज हम ये समझते हैं कि आखिरी कुर्बानी हो चुकी है, लेकिन मेरा मतलब कहने का ये है कि उसका तरीका होता है, राइट, आप उसको किसी के ऊपर फतवा लगाने के लिए इस्तेमाल मत करें, ये मैं तो बहुत से लोग हैं जो फतवे लगाते हैं, जैसे मैंने कहा ये सभी करते हैं, जिसका बस चलता है जिसका वो करता ही, टाई मत पहनो, बहुत से लोग हैं जी टाई जो है ये स्लीप का निशाना है, अबे यार कैसी कैसी बातें बनाकर लोगों को इतना बेवकूफ बनाया हुआ है कि वो लोग बेचारे घनचक्कर बन गए कि यार ये हो क्या गया, तो जरूरत इस बात की है परवेश साहेब कि कोई आए और कहे यार सारे आराम से बैठो, राइट, आराम से बैठो, उनको नीचे बिठाए, उनको बोले सब्र करो, क्या तुम पागल हो गए हो, लोगों को भी पागल किया हुआ है, मैं तुम्हें बताता हूं ये तमाम जो निम्बू है या तमाम जो किन्नू तुमने रखे हुए माल्टे रखे हुए हैं, मैं तुम्हें बताता हूं कि इसका मकसद क्या है, इसको जब आप नचोड़ेंगे तो इसके अंदर से जो असर निकलेगा मैं वो तुम्हें बता देता हूं, और वो असर क्या होगा, मैं एक प्याले में जमा कर देता हूं, इतने प्याले में उसी से सारे विटामिन आपको मिल जाएंगे, अगर कोई शख्स आकर ये कह दे परवेश साहब कि यार ये लोग ना अपनी दुकान चमका रहा है, ये तुम्हें इसलिए किन्नू बेच रहा है, कह रहा है कि मेरा किन्नू अच्छा है, वो कह रहा है मेरी मुसम्मी अच्छी है, वो कह रहा है मेरा संतरा अच्छा है, राइट, ये सारे अपने अपने चक्कर में इन्होंने मुनाफा बना रहा है, इसलिए लगे हुए तुम्हें खींच रहे, फ्लारे यू नो पादरी ने वो चर्च बनाया हुआ है, फ्लारे मौलवी ने वो मस्जिद बनाई हुई है, राइट, तो ये अपने अपने चक्कर में तुम्हारा सत्यानाश कर रहे हैं, राइट, मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि ये इसका मकसद क्या है, बाल्टे का, एक्चुअली बाल्टे का मकसद ये है कि आपको कैल्शियम वाइटामिन सी मिले, आपको वाइटामिन एक्स वाई जी मिले, है ना, जो भी आप कह लें, उसके बाद ये वाले मिनरल्स मिले, कैल्शियम मिले, पोटाशियम जो भी है वो मिले आपको, ठीक है, तो ये है इसका मकसद, एक्चुअली खुदा ने ये बाल्टा इसलिए बनाया था कि उसके अंदर ये वाइटामिन्स रखे जो तुम्हारे जिस्म के लिए जरूरी है ना परवेश साहब, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको स्क्वीज करता हूं, सारे ये जो जिन्होंने रेडियां लगाई हुई है ना इनको भगा देता हूं मैं, इनकी मत सुनो, सत्यानाश कर दिया तुम्हारा, मैं इसको स्क्वीज करता हूं और तुम्हें बताता हूं कि इसका मकसद क्या है, ये जो है ना क्या कहते हैं उसको जो नचोड़ है इसका वो क्या है। इसी तरह परवेश साहब आज दुनिया में मजहब का लोगों ने इतना नुकसान किया है, इतनी ब्रांचें बनाई है, कि किसी को आना चाहिए जो कहे कि भाई मैं तुम्हें बताता हूं कि मजहब का निचोड़ क्या है, तुम खाम खा इन चक्रों में मत पड़ो, फलाना खाना मत खाओ, क्रिकेट मत खेलो, गुल्ली डंडा नहीं खेलो, है ना, और और इस तरह का बुरका पहनो, नहीं ये गलत है, इस तरह का बुरका ठीक है, इतना हाथ तुम देख सकते हो, नहीं नहीं पूरा हाथ ही देख सकते हो, है ना, ऐनक पहनो, ऐनक ना पहनो, राइट, और लिपस्टिक लगाओ, राइट, तो फिर नमाज नहीं, ये सारे आपके मसले हैं भाई, लेकिन मेरा मकसद कहने कि हर शख्स की मुख्तलिफ राय है उसके बारे में। आप 10 लोगों से पूछोगे, 10 लोग बोलेंगे कि मैं ही ठीक हूं, और वो बंदा कहता है यार मैं क्या करूं ना। हमारी एक प्रोफेसर बहन है, और मैं आई वॉज अ टीचर पिछले जन्म में, मैं आई वॉज अ मैथ टीचर, तो अब भी मैं बच्चों को जब जरूरत पड़ती है, जो मेरे जानने वाले हैं मुझे कॉल करते हैं, कहते जी आप जरा ये हमारे बच्चे को ये सवाल है ये मैथ का ये समझा दे। तो बहुत से मेरे यू नो आई नो टू मेनी किड्स पीपल इस लिहाज से। तो एक बहन की कॉल आई तो कह ले कि वो आप ना मेरी बेटी है ये, और ये पेशावर से ताल्लुक है उनका, तो कह ले कि हमारी बेटी है, आप उसको ये मैथ की अलजेब्रा की समझ नहीं आ रही, तो आप उसको तो बैठ के बातें करने लगी, तो कहती है सर मुझे तो ऐसा लगता है कि हर चीज को हराम कर दिया, हम क्या करें। कहती है कि हर चीज मुझे लगता है कि ना हम कुछ खा सकते हैं, ना हम कोई कपड़े पहन सकते हैं, ना हम कुछ देख सकते हैं, हर चीज को हराम कर दिया, जिसको सुनो वही कहता है ये हराम है, राइट। तो वो कहती मैं क्या करूं, यकीन की जिन्होंने मुझसे कहा। तो कोई शख्स आए वो कहे यार इनकी बातें मत सुनो, पीछे पीछे हट जाओ, ठीक है चुप हो जाओ, मुझे बता दे दो। तो सबसे पहले इतनी बातें, इतना कॉम्प्लिकेशन, और एक आवाज आती है परवेज साहब, मेरा कैमरा फंस गया एक सेकंड, ओके, एक आवाज आती है, और वो आवाज जो है वो कहां से आएगी, जाहिर बात है परवेज साहब बाइबल से आएगी ना, राइट। और क्योंकि बाइबल जो है वो आपको जरूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। यहां पर एक, और मैं इतना खुश हुआ इसको देखकर, और मुझे यकीन है कि आप भी खुश होंगे, अगर नहीं होंगे तो होना चाहिए आपको, तो कोशिश करें कि खुश हो जाए जैसा मैं खुश हुआ था इसको पढ़कर। तो प्रोफेसर साहब पढ़ते हैं, लिखा है ये मीका नबी, बाइका अंग्रेजी में कहते हैं, उनकी सहीफा है, छठा बाब है और उसकी आठवीं आयत है, और कहता है, वो कहते हैं देखिए कि इतना तुमने मजहब का वो कंफ्यूजन बनाया हुआ है, अय इंसान उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है, खुदावत तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले। सिंपल सी बात कि खुदा इसके अलावा तुझसे और कुछ नहीं चाहता, तेरी इबादतें, तेरी रियाजतें, तेरा सफाई सुथराई करना, नहाना धोना, गॉड डजंट नीड दैट, यू नीड इट, तुझ में से बदबू आती है इसलिए तुझे उसकी जरूरत है, खुदा को इसकी जरूरत नहीं है। खुदा पर मैं कभी कभी सोचता हूं, और माफ कीजिएगा मैं समटाइम आई एम जस्ट वेरी ग्राफिक, जब आप बाथरूम में जा, खुदा हर जगह है, जब आप बाथरूम में जाते हैं या बाथरूम अपने घर पर बैठे होते हैं, एंड प्लीज माफ कीजिए दिस इज ग्रोस, अरे ये थोड़ी बदबूदार बात है, एंड यू पैस गैस, क्या खुदा वो सूखता है? वो थोड़े खुदा हर जगह है, राइट, आपके घर में, आपके दिल में है, और वो हर चीज को जानता है, डज ही स्मेल योर गैस? अब माफ कीजिए बट अ क्वेश्चन शुड कम,
जो है वो है ना,
है ना, मतलब कि भाई खुदा आपको द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक कि जब आप ये सारा कुछ करते हैं, हर रोज करते हैं, क्योंकि टेक्निकली मेडिकल साइंस के मुताबिक एवरी बॉडी पैसेज, अब आई एम सो सॉरी, अब मेरा चाय पीने को भी दिल नहीं कर रहा, तो हर शख्स अ सर्टेन लीटर्स ऑफ गैस द पैस एवरी डे, राइट, और इतने बिलियन लोग हैं प्रवेश, सब जब सब करते हैं तो कहीं ना कहीं तो जाती होगी दुनिया में, खुदा भी यही है, ना हम कहते हैं खुदा हर जगह है। मेरा मतलब कहने का ये है कि खुदा को क्या फर्क पड़ता है उससे, वो इन चीजों से बाला तर है, राइट, आप सफाई सुई ये किया वो किया, बाल छल पूछे, है ना, और खुदा के पास गए और खुदा कहते हैं अबे यार of course not like that ki wo jo pehle jo tu wahan jo karke aaya hai kya uski mujhe smell nahi aayi, tu yahan bada paak ban raha hai, mujhe pata hai tu wahan pe kya tha. Mera maqsad kehne ka ye hai ki baaki sari cheezon ki خدا کو ضرورت نہیں ہے. آپ خود ہی جیسے تسلی دیتے اپنے آپ کو جیسے چوسری بچہ منہ میں ڈال کر سمجھتا ہے کہ دودھ پی رہا ہے. بہرحال تو بائبل ہمیں کیا بتاتی ہے, میکا نبی کی معرفت, وہ کہتے ہیں کہ دیکھو سارے ریڈیو والوں کو چھوڑو, میں تمہیں بتاتا ہوں بالٹے کا مقصد کیا تھا, اس کے اندر جو وائٹامن ہے وہ کیا تھے, وہ یہ تھا کہ اے انسان اس نے تجھ پر اپنی نیکی ظاہر کر دی ہے, خداوند تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے. اتنی بڑی شریعت کی کتابیں میں تین لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں, یہ میکا نبی کہتے ہیں, کہتے ہیں تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے. سمپل از دیٹ. اب یہ اسی چیز کو اب دیکھیں, اتنی خوبصورت بات آپ کو اور کہاں نظر آئے گی. ٹھیک ہے, اچھا اب اسی چیز کو دیکھیے, مسیح یسو نے آ کر اس کو مکمل کیا. اس لیے مسیح یسو کہتے ہیں کہ مسیح یسو نے شریعت کو مکمل کیا ہے, تکمیل کی ہے, یعنی کہ اس کا نچوڑ نکالا ہے. نچڑا ہوا مذہب وہ ہے جس کا جوس نکال دیا گیا ہو, اور وہ صرف مسیح یسو نے نکالا. جیزس کرائسٹ ہیز دی ابلٹی, میں نے کہا تھا کسی بھائی کے لال میں اتنی جرت نہ اتنی ہمت نہ اتنی طاقت ہے اس کی گرپ میں کہ وہ کسی کا جوس نکال سکے. اونلی جیزس was able to squeeze everything out of the religion and presented you in a beautiful cup کہ یہ ہے مذہب کا جوس, اس کو پیو, اس سے تم سارے مذہب کے اوپر عمل کر لو گے. That's it. نہیں سمجھے میری بات کو. And that's why you must listen to Jesus Christ, you must listen to his teaching, and not just that, you must accept him in your heart so that he stays with you, and he does. He stays with you, he guides you, he directs you from inside. وہ شریعت کو آپ کے دل کے اوپر لکھ دیتا ہے. آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے, وہ اندر سے بتاتا ہے. لیکن انہوں نے ایک ایسی خوبصورت بات کی جو آج بھی لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے کسی عام آدمی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے. غور سے سنیے گا اس کو. یوں لکھا ہے, اور یہ جس کو اس بات کی سمجھ آ گئی اس کی سب کچھ عاقبت بھی اور دنیا بھی سنور جائے گی. لکھا ہے, اور جب یہ مذہبی عالم تھے, شرع کے عالم, اور وی ریسپیکٹ دم, دیز ور ویری ایجوکیٹڈ اینڈ لرنڈ پیپل, اینڈ وی ریسپیکٹ دم, کیونکہ جو یہ عابد دے ورس پرویز صاحب, یہ جو فیریسیز تھے نا, ان کو آپ آرڈینری لوگ مت سمجھیے. بائبل کی جو پہلی پانچ کتابیں ہیں جو جس کو ہم توریت کہتے ہیں, رائٹ, جو موسیٰ, حضرت موسیٰ کے احکام ہے, دے ہیڈ میمورائزڈ اٹ. اتنے عالم لوگ تھے, they were not like اور یہ they were serious people, اور کتنے سالوں تک یہ اسٹڈی کرتے تھے, رائٹ. تو یہ دے ور ناٹ آرڈینری پیپل, وی مسٹ ریسپیکٹ دم. لیکن میرا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ دے سم آف دیم ور مسٹیکن. تو لکھا ہے جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا, صدوقی ور سڈن کائنڈ آف پیپل, دے ہیڈ سڈن بلیف, آئی ول ناٹ گو ٹو ڈیٹیل آن دیٹ. تو جب دوسرے مذہبی عالموں نے سنا تو وہ بھی آئے, جمع ہو گئے, اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا, اے استاد, توریت میں کون سا حکم بڑا ہے, رائٹ, کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کون سا مالٹا اچھا ہے نا. حکموں کی بنیاد پر ہی تو لوگوں نے پرویز صاحب فرقے بنائے ہوئے ہیں نا, کہ یہ حکم ایسے کرو, یہ حکم, حکموں کی بنیاد پر لوگوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں, مالٹے مالٹوں کی ریڑیاں بنائی ہوئی ہے. آئے استاد, توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اسے کہا, خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے, اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. انہی دو حکموں پر, آہا ہا, کیا بات ہے پروفیسر, انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا دار و مدار ہے. کین یو بلیو, کین یو بلیو کہ دل چاہتا ہے کہ انسان ان لبوں کے بوسے لے جن سے یہ الفاظ نکلے ہیں, اٹرنل ٹروتھ, کہ تم نے مالٹوں کی ریڑیاں لگا لگا کر لوگوں کا ستیاناش کر دیا ہے. یہ حکم کیسا ہے, یہ حکم کیسا ہے, وہ حلال ہے, وہ حرام ہے, میرے پاس آؤ, میں تمہیں بتاتا ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ شریعت کے صرف دو ستون ہیں, خدا سے محبت کرو اور جا کر اس کے لوگوں سے محبت کرو. زیادہ باتیں بد بناؤ,
دو پلر
تین پانچ بت کرو, ورنہ خدا تمہیں نو دو گیارہ کر دے گا اپنے سامنے سے. اور بہت سے لوگ ہیں جو آج بڑے بڑے مذہبی بنے ہوئے, خدا جانتا ہے, لیکن اتنا ضرور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہیں گے کہ ہم تو بڑے مذہبی تھے, اور بس خدا ان سے کہے گا میں تمہیں جانتا ہی نہیں, I don't know you, get away from me, نو دو گیارہ ہو جاؤ میرے پاس سے. تو اگر آپ مذہب کے نام پر تین پانچ کر رہے ہیں تو تین پانچ کرنا بند کر دیجئے, ورنہ خدا آپ کو نو دو گیارہ کروا دے گا. یہ بائبل کا بیان ہے. اور بس یہ سنے کہا کہ ادھر آؤ, کبھی اس ریڑی لگائی ہوئی ہے, وہ ریڑی لگائی ہے تم نے مذہب کی فرقوں کی. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مذہب کا مقصد کیا ہے, اور مقصد یہ ہے خدا سے محبت کرو, لوگوں سے محبت کرو, اللہ اللہ پرویسا خیر صلاح, اور گھر جاؤ, خود بھی خوش رہو دوسروں کو بھی خوش رہو رہنے دو, خود بھی بالٹے کھاؤ آپ کھاؤ دوسروں کو بھی کھانے دو, رائٹ, خود بھی گلی ڈنڈا کھیلو دوسروں کو بھی کھیلنے دو, خود بھی کرکٹ کھیلو دوسروں کو بھی کھیلنے دو, ٹھیک ہے. اگر تم خود کرتا پہنتے ہو تو دوسرا اگر ٹائی پہننا چاہتے تو پہننے دو اس کو, اس کی جان کو عذاب مت بناؤ. سمجھ میں بتا آپ کو, مسیح یسو میں اتنی طاقت ہے کہ نچوڑ کے رکھ دیا مذہب کو, کسی اور نے آج تک یہ نہیں کہا, نہ پہلے نہ بعد میں. اور یہ جب مذہب بچڑ جاتا ہے پرویز صاحب, جب اس کا اثر نکل جاتا ہے, اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی. جب مذہب کا نچوڑ ہی نکال دیا پرویز صاحب, رائٹ, اور جب آپ یہ کام کرتے ہیں, خدا سے محبت کرتے ہیں, انسانوں سے محبت کرتے ہیں, جیسے میں نے کہا وہ اصلی مقصد پورا ہو جاتا ہے جس کے لیے خدا نے آپ کو بنایا تھا, جو ہم نے پہلے پیدائش میں پڑھا کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا رحم کرنے کے لیے, محبت کرنے کے لیے. علامہ اقبال, علامہ اقبال آئی تھنک ان کی سوچ واز گڈ. ہیلو
ہاں جی, کیا حال ہے سر جی؟
جی سر ٹھیک ٹھاک سر, تھوڑا جاؤ.
میرا نام سیمی
سر,
تھوڑا نام
جی سر. سر آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
مثال بڑی عجیب جی دیتی ہے
تسی. اچھا بولیے.
اصل اگر سوچو کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نو کرسچن بھائی جڑے نے خدا مندے نے
جی,
کہ اگر باتھ روم ادا مطلب جو بھی انسان سن باتھ روم چو بھی جاندے سن, کہ تسی بڑی عجیب جی مثال کو اچھی جی دیا کرو پڑھیا لکھیا کی کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اگر خدا نے تو خدا بھی باتھ روم جانا سی, کیسی گل کر دے ہو تسی؟
انٹرسٹنگ, ویری ویری
ایسی ذرا کو اچھی گل کر
دے
سمجھ سکے.
سوال کر لیا میں جواب دوا
جواب دو جی میں دینا جی تسا اپنے جو بھی جواب دیتا
میرا جواب سننے تیار ہو یا نہیں؟
میں جواب تھوڑا کی سننا ہے, تو
ਦੇਖਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ,
2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ
ਦੇਖਾ
ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ
ਦੇਖਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਾਈ
ਭਾਈ ਬਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਲਈ ਚਰਚ
ਬੇਰੀ ਬੇਰੀ ਬੇਰੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਾ
ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਰ ਯੂ ਰੈਡੀ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮਾਈ
ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਦੇਖਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇਖਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਿਡ ਯੂ ਹੀਅਰ ਦੈਟ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਜਬ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਅਭੀ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਬੋਲਦਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਦੇਖੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨੀ ਜੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆਓ ਜੀ
ਜੋ ਬਚਪਨ ਮੇ ਘੰਟੀ ਬਜਾ ਕੇ ਭਾਗਦੇ ਥੇ ਹੈ ਨਾ ਪਰਵੇਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪਨੇ ਕਭੀ ਬਚਪਨ ਮੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੀ ਘੰਟੀ ਬਜਾ ਕਰ ਭਾਗੇ ਪਰਵੇਸ ਸਾਹਿਬ ਘੰਟੀ ਬਜਾ ਕੇ ਭਾਗ ਜਾਤੇ ਮੈਨੇ ਕਈ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲੀਜੀਏ ਪਤਾ ਕਿਆ ਬੋਲਤੇ ਆਪਕਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਵੋ ਲੋਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਬਤਾਤੇ ਹੈ ਜਬ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਲਗਤੇ ਤੋ ਭਾਗ ਜਾਤੇ ਅਬ ਮੈਨੇ ਉਸ ਕਿਹਾ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਆ ਅਬ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੀਏ ਤੋ ਪਤਾ ਕਿਆ ਬੋਲ ਕਹਿਤੇ ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਆਪਕੋ ਆਪਕਾ ਜੋ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਸਰ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਬਚਪਨ ਮੇ ਘੰਟੀ ਬਜਾ ਕਰ ਭਾਗਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜੋ ਅਭੀ ਤੱਕ ਆਪਕੀ ਆਦਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਪਨੇ ਘੰਟੀ ਬਜਾ ਜਬ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਾ ਤਾਂ ਭਾਗ ਗਏ ਇਹ ਤੋ ਬਾਤ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾ ਆਪਨੇ ਕੌਲ ਕੀਆ ਪਰਵੇਸ ਸਾਹਿਬ ਹਮਨੇ ਉਸਕੋ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਆ ਕੌਲ ਕੋ ਰਾਈਟ ਔਰ ਜਬ ਹਮਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਈਏ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਤੋ ਭਾਗ ਗਏ ਇਹ ਤੋ ਜੋ ਆਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੇ ਚੂੜੀਆਂ ਵੜ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ
ਸੰਸਦ ਮੈਂ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਇਨਕਾ ਜੋ ਕੁਸਚਨ ਥਾ ਵੋ ਰੀਜਨੇਬਲ ਕੁਸਚਨ ਸਵਾਲ ਅਬ ਇਸਕਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਪਕੋ ਦੇਣਾ ਪੜੇਗਾ
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੋ ਤੋ ਦੇਗੇ ਮੈਂ ਜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਤੋ ਚਾਹ ਰਹਾ ਥਾ ਯੇ ਤੋ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਕੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਤ ਕਰੇ
ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਉਸਸੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਥੇ ਵੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਆਪ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਕੇ
ਮੂੰਹ
ਕੋ ਅਬ ਮੌਕਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਪ ਕਰ ਲੇ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੀਜੀਏਗਾ
ਜੀ ਜੀ ਜੀ
ਹਮਕੋ ਥੋੜਾ ਸਾ ਇਸਕਾ ਰੁਖ ਪੜੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਕਾ ਜਵਾਬ ਸਾਥ ਸਾਥ ਦਿਆ ਜਾਏ
ਜੀ
ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਉਸਕੋ ਨਾ ਛੋੜਾ ਜਾਏ
ਆਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਦੈਟ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਸਵਾਲ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਭਾਗ ਜਾਤੇ ਹੈ ਅਬ ਬੈਠ ਕਰ ਬਾਤ ਤੋ ਕਰੇ
ਸਿਰਾ ਇਹ
ਦੇਖਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੋ ਉਰੜੇ ਹਮ ਪੇ ਸਵਾਲ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤੋਹਬਤੇ ਲਗਾਈ ਆਪ ਇਹ ਹੈ ਆਪ ਪੜੇ ਲਿਖੋ ਲਈ ਬਾਤੇ ਕੀਆ ਕਰੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਔਰ ਫਿਰ ਭਾਗ ਗਏ ਇਹ ਤੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾ ਇਹ ਤੋ ਘੰਟੀ ਬਜਾ ਕੇ ਭਾਗਦੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਅਬ ਪਰਵੇਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੋ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਗਾਡ ਰਾਈਟ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ
ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਏ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਯੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਾ ਥਾ ਆਪਕੋ ਯੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਾ ਥਾ ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਥਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਤੇ ਹੈ ਔਰ ਆਤੇ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਯੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੋਗਾ ਇਸ ਉੱਪਰ ਟਾਪਿਕ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਔਰ ਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦੇਗੇ ਜਬ ਆਪ ਖੁਦਾ ਕੇ ਘਰ ਮੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਮੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਯਾ ਚਰਚ ਮੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਯਾ ਮੰਦਰ ਮੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਮੁਝੇ ਬਤਾਈਏ ਔਰ ਯੇ ਬਾਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਮੁਝੇ ਯੇ ਬਤਾਈਏ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕਿਆ ਬੋਲੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਮੇ ਬੋਲ ਦੂੰ ਯਾ ਆਪ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੇ ਬੋਲ ਦੂੰ ਆਪ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਤਾ ਆਪ ਜਬ ਮਸਜਿਦ ਮੇ ਯਾ ਚਰਚ ਮੇ ਯਾ ਮੰਦਰ ਮੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਯਾ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੇ ਜਾਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਲੀਜੀਏ ਯਾ ਟੈਂਪਲ ਮੇ ਜਾਤੇ ਹੈਕਲ ਮੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਆਪ ਮੁਝੇ ਬਤਾਈਏ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਖਾਨੇ ਕੋ ਸਾਥ ਲੈ ਕਰ ਜਾਤੇ ਹੈ ਯਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਜੀਏ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ
ਸਵਾਲ ਹੁਆ
ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ
ਜੀ
ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕੀ ਸੋਚੀਏ ਯੇ ਗੰਦਗੀ ਆਪ ਸਾਥ ਲੇਕਰ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਸੇ ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪਕੋ ਜਿਤਨਾ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਵੋ ਕਰ ਸਕੇਗੇ ਆਪ ਜੈਸੇ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੇ ਪਸੀਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਜਰਾ ਸਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਤੇ ਦੇਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਨ ਦ ਔਰ ਥੋੜੇ ਡਰਟ ਇਨ ਦ ਏਅਰ ਤੋ ਜਬ ਆਪ ਜਾਤੇ ਹੈ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जब पाखाने को साथ लेकर जाते हैं और खुदा के सामने सजदा रेज होते हैं, इसे कॉल आ रही है क्योंकि ये भाई है हमारे, मेरा ख्याल है कि आप अगर कॉल कर रहे हैं व्हाट्सएप पर, तो व्हाट्सएप पर हम यहां पर रिसीव नहीं कर सकते, तो आप जरूर हमें डायरेक्ट कॉल कीजिए, नॉट ऑन व्हाट्सएप, डायरेक्ट कॉल कीजिए तो हम आपसे बात करेगा, क्योंकि सिर्फ ओवरसीज कॉल, बट देयर कॉलिंग ऑन व्हाट्सएप, मोस्ट लाइकली इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड का एरिया कोड है 44, तो आई बिलीव दैट्स इंग्लैंड एरिया कोड.
The views expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
Hi Canada, Assalamu Alaikum, this is Bilal Ashraf.
And this is Mahira Khan. And our film Superstar is coming out this Eid al-Adha.
So go and get your tickets now.
Right now.
And see us on the big screen.
Canadian Sports and Recreation Marketing ला रहा है क्रिकेट के पुरजोश शायकीन के लिए पहला मेगा इवेंट, ताजा फर्स्ट कैनेडियन इंटरनेशनल टेप बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप.
सितंबर 14 और 15 CAA सेंटर ब्रैम्पटन में आ रहा है ताजा फैंटास्टिक फॉल फेस्ट.
रंगारंग तफरी से भरपूर शानदार प्रोग्राम.
टिकट फ्री, पार्किंग फ्री. स्टॉल बुकिंग या स्पॉन्सरशिप के लिए राबता कीजिए
416-560-8583.
चांदनी चौक चाट चटोरी गली में, आमचूमी पाव भाजी चटोरी गली में, कलकत्ता भेलपूरी चटोरी गली में, जलेबी तलेगी चटोरी गली में, कपल का नरम टक्का चटोरी गली में.
Enjoy कीजिए 12 food stations and up to 150 items at Chattori Gully Food Festival. Tandoori Flame Mississauga and Brampton. Niyat phislegi jab jeeb laplapayegi, jab janta Tandoori Flame mein aayegi. Tandoori Flame, sab ke liye kuch na kuch.
Canada, be ready to witness this November 2019, Pakistan's biggest rock band returns to Toronto after 15 years.
This is Rehan Siddiqui presenting the Janoon Comeback Tour, only one show in Canada and that also in your city, Toronto. For group tickets, meet and greet, you can call me at 713-545-4115. Aap apni tickets ko select bhi kar sakte hain by going online to ticketmaster.ca.
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने. उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नु मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे.
SNS लॉयर्स को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है. अपने हक जानन ले या सलाह लैण ले अज ही SNS लॉयर्स नु कॉल करो 416-655-2000.
ਅਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਣਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ